अच्छा, अब आगे एक बहुत अहम आयत आ रही है। अहम इस लिहाज से है कि एक तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो आदमी खड़ा हुआ था ना, जिसने कहा था कि आप इंसाफ करें और ऐसे करें, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इंसाफ करना, या क्योंकि वो चाहता था कि मेरे मुझे दिया जाए। असल में पीछे क्या था कि मुझे कुछ मिले, तो वो कहने लगा कि आप इंसाफ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि देखो, जो फर्ज सदकात हैं यानी जो जकात है, उसमें तो किसको देना और किसको नहीं देना, इसका हक अल्लाह ताला ने नबी को भी नहीं दिया कि आपने किसको देना किसको नहीं देना। इसको अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में बता दिया, ठीक है। इससे पता चलेगा, यहाँ पे आपको इस आयत में, आयत नंबर 60 सूरह तौबा, ये याद रखिए, यहां से पता चलता है कि जकात किन लोगों को दी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जी फलाना को जकात लगती है कि नहीं, फलाना को जकात लगती है कि नहीं, तो जकात किन को लगती है वो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहली एक तो बात ये समझ लें कि जकात जो है सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है। एक मद सिर्फ ऐसी आएगी जो मैं इसमें मेंशन करूंगी, 8 लोग हैं या 8 जगह हैं जहां पे जकात आप दे सकते हैं, उनमें सिर्फ एक ऐसा है जिसके अंदर किसी गैर मुस्लिम को भी दी जा सकती है। बाकी जकात का माल मुसलमानों से ही लिया जाता है और मुसलमानों पर ही खर्च किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मुसलमान से लिया जाता है तो फिर मुसलमानों के मालदारों से लिया जाता है और मुसलमानों के फकीरों पे ही खर्च किया जाता है, फेयर है ना, ठीक है। बाकी आप सदकात, जो नफली सदकात हैं, वो भले आप किसी पे भी खर्च करें, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जकात खास तौर पे सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है। और जकात भी उसमें से निकाली जाएगी जो इंसान की सेविंग होती है। सेविंग यानी जो माल निसाब को पहुंच जाए, और निसाब क्या है, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी को, 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए, तो या इसके बकदर आपके पास माल है, तो फिर ये है निसाब, यानी जितना माल इस तक पहुंच गया है और वो माल 1 साल तक आपके पास पड़ा हुआ है, तो तब उसके ऊपर जकात होती है। यानी आपने जो भी आपके पास माल है, इसका मतलब है आपने खाया पिया पहना ओढ़ा, सैरों पे गए और भी अपनी जरूरियात पे जितना भी आपने खर्च कर लिया, फिर भी ये एक्स्ट्रा था जो 1 साल तक पड़ा रहा। एक्स्ट्रा ही था ना जो पड़ा रहा है, जाहिर है अगर जरूरत होती तो ये खर्च हो जाता, लेकिन ये किसी बंदे के पास इतना माल जितना 7.5 तोले सोना जिससे खरीदा जा सकता है, या 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती, इतना माल उसके पास पड़ा हुआ था और वो कर्जदार भी नहीं हो। अब कर्जों का वो वाली ना समझिएगा, जैसे हर एक ने यहाँ पे कर्जे लिए, मैं घरों पे कर्जे, इस पे कर्जे, वो वाली ना समझिएगा, क्योंकि वो तो शौकिया ही लिए होते ना कोई भी, वरना अगर कर्ज उतारने का इतना शौक हो तो हम ये जो सेविंग है ये उसमें दे दें, तो उसको ना सोचें। तो तब इसमें से जकात देनी होती है। इसका मतलब है कि ये जकात कोई आपकी जरूरतों में से नहीं निकाल के ली जा रही, ये आपकी एक्स्ट्रा जो माल है, जो आपकी बचत है, उसमें से आपको कहा जा रहा है कि आप निकालें। अच्छा, अब इस आयत को भी आप देखें कि ये भी इन्नमा से स्टार्ट हो रही है, और आप जितने भी इसके अंदर आएंगे वो सारे मुसलमानों के, जैसे अब मैं अगर फकीरों की बात करूँ, मिस्कीनों की, मुसलमानों की ही बात हो रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आम सदका करने का फरमाया ना, तो हदीस में आता है हर मजहब वाले पर सदका करो, जो आम सदका है, लेकिन जकात के बारे में फरमाया हजरत मुआज को, जब वो यमन उनको भेजा था, कि जकात सिर्फ मुसलमानों के अमीरों से लेना और उन्हीं के फकीरों पर खर्च करना। तो जकात हम गैर मुस्लिमों से लेते भी नहीं है, किसी भी जगह पे अगर गैर मुस्लिम रह रहे हैं तो उनसे ज़कात कलेक्ट नहीं की जाएगी। जो आदमी साहिब निसाब नहीं है, नहीं है साहिब निसाब, मगर वो तंदुरुस्त है, कमाने के काबिल है और वो कमा सकता है, तो उसको ज़कात देना जायज़ है, मगर ये जायज़ नहीं कि वो लोगों से सवाल करता फिरे, ठीक है। साहिब निसाब नहीं है यानी उसके पास कम है, इतने नहीं है जितने ये है, मगर वो तंदुरुस्त है, कभी ये कमाने के काबिल हो और एक दिन का गुजारा इसके पास मौजूद है, उसको अगर ज़कात देना, अगरचे देना जायज़ है मगर ये जायज़ नहीं है कि वो लोगों से सवाल करता फिरे, यानी उसकी कोई मजबूरी वगैरह है तो वो लोगों से कहता ना फिरे कि मुझे दो दो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। इन्नम सदकातु, अब मैं इसको कहूंगी बेशक, लेकिन आपको पता है ना कि बेशक का मतलब क्या है, यानी सदका, सिर्फ सदकात से यहाँ पे मतलब क्या है, जकात, इसलिए कि आगे एंड में आप देखिए फरीदतम, फरीजा है ये, ठीक है, ये नफली जकात सदके की बात नहीं हो रही, ये जकात की बात हो रही है। और सदका भी सिद्क से होता है, सिद्क यानी सच्चाई, तो इसमें जब इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में देता है तो असल में अपनी सच्चाई को साबित कर रहा होता है कि मैं अल्लाह के लिए ये कुर्बान कर सकता हूँ अपना माल, मैंने जो बोला है वाकई मैं इसमें सच्चा हूं। सदकातु लिलफुकरा, सबसे पहली मद क्या है, फकीरों को। फकरा कौन होते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसको कह सकते हैं एक तो है ना कि जिसके पास कुछ है, एक वो है जो मांगता फिरता है, जो नादार है, मोहताज है, जिस कुछ भी नहीं है उसके पास, उसको फकीर कहते हैं। हम अपनी जुबान के अंदर भी फकीर किनको कहते हैं, मोहताजों को कहते हैं, कहते हैं इसके पास कुछ नहीं है, फकीर आदमी है, तो फकरा वो है। वैसे बहुत सारे अकवाल हैं इस बारे में कि फकीर कौन है और मिस्कीन कौन है, लेकिन हम बहुत सारे चीजों को नहीं ले सकते, तो हम एक ही चीज को लेते हैं कि जिनकी हाजत बहुत सख्त हो, बहुत सख्त हो, कमर तोड़ देने वाली गुर्बत, बहुत गरीब लोग जिनको कहते हैं, और वल मसाकीन, और मिस्कीन। मिस्कीन कौन है, मिस्कीन फकीर से कुछ बेहतर हालत में है, ये वो है, उसको फकीर तो नहीं कहते इसलिए कि फकीर तो बिल्कुल ही गिरा पड़ा हुआ बेचारा, कुछ कुछ भी नहीं है उसके पास, इसके पास कुछ है तो सही, सही सालम जिस्म वाला भी है, कुछ है जो मतलब है, कुछ कमाता भी है, लेकिन इतना नहीं उसका है कि वो पूरा पड़ जाए, इतना नहीं है कि वो अपनी सारी जरूरियात को आराम से सुकून के साथ पूरी कर ले। मसलन है कि आप देखते ही हैं कि महंगाई के दौर इतने होते हैं, घर में 5-6 बच्चे हैं, बूढ़े वालदैन भी हैं, एक कमाने वाला होता है ना, वो बूढ़े वालदैन कुछ कमा सकते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं वो भी नहीं कुछ कर सकते, और एक बंदा मजदूरी करता है, अब क्या है तो सही उसके पास मजदूरी, वो कहीं मसलन है कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कोई है, कोई ड्राइवर है, कोई कोई है, लेकिन इतनी जितना उसके ऊपर भार है उसके घर वालों का, उतना वो कमा नहीं पाता कि वो आराम से सुकून के साथ जिंदगी गुजार ले, या रोटी पानी तो चल रहा है, जरा सी कोई बीमार हो जाएगा तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं है। ठीक है, अब मिस्कीन की डेफिनेशन हमें इससे भी समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है जो दो दो टके के लिए मांगता रहे, बल्कि मिस्कीन तो वो है जिसकी आमदनी उसकी जरूरियात जिंदगी से कम हो। ठीक है, ये वो नहीं, वो फकीरों की तरह ऐसे मांगता नहीं फिरता, या वो नहीं है कि जिसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि सूरह कहफ में मिस्कीन का हमें पता चलता है कि कश्ती वालों को कहा गया कि वो मिस्कीन है, जो है ना किस्सा सूरह कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का, तो उसमें कश्ती वालों की बात आती है, तो कहा गया वो कश्ती मिस्कीनों की थी, अब वो मिस्कीन कहा गया उनको, लेकिन वो तो कश्ती चलाते थे, इसका मतलब उनके पास जॉब भी थी, वो कश्ती से कुछ कमाते भी होंगे, सवारियां इधर से उधर लेकर जाते थे, तो लेकिन वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, इतने कोई बहुत सहूलत से रहने वाले नहीं थे, रोजगार था लेकिन बहुत अच्छे खाते पीते कुछ ऐसे नहीं थे, मुश्किलों से जरूरियातें जिंदगी जिनकी पूरी हो रही है, तो उनको मिस्कीन कहते हैं। उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जो है ना मालदार पे और तंदुरुस्त तमन्ना पे हलाल नहीं है, यानी जो बंदा मालदार है वो भी सदका नहीं ले सकता, जकात नहीं ले सकता, और जो तंदुरुस्त है और वो कमाता भी हो और वो उसके पास माल भी है वो भी नहीं ले सकता। ठीक है, यानी मालदार भी और तंदुरुस्त भी, एक बंदा है वो अच्छा कर सकता है, उसके पास सेहत भी है, उसके पास माल भी है, तो वो अब ये नहीं कहे कि अब मेरे चूंकि अब मैंने सोच रहा हूं कि मैं बेटी की शादी धूमधाम से करूं तो अब मुझे इसके लिए ज़कात दे दें, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग शादियों के लिए मांगते हैं ज़कात, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ अब इतनी बदकिस्मती से इतने बेटियों की शादियों के लिए अखराजात हो गए कि अगर वो ना करें तो उनकी बेटी को इस साथ कोई शादी ही नहीं करना चाहता जब तक जहेज ना दें। लगे तो इस्लाम में है ही नहीं जहेज, और ये भी इस्लाम में नहीं है कि इतनी इतनी ग्रैंड आप शादियां करें जिसमें लोगों को खाने खिला रहे हैं। शादी के लिए तो खाना खिलाना जरूरी ही नहीं है कि आप खाना खिलाया जाए, या इस तरह को मूवी भी बन रही है, टेंट भी लग रहे हैं और फोटोग्राफी भी हो रही है और बैंड बाजे भी हो रहे हैं, इनमें से तो कोई भी चीज नहीं। लेकिन वो कहते नहीं इसके लिए ज़कात चाहिए। तो अब चाहे मिस्कीन है, लेकिन मिस्कीन भी ये नहीं है कि कोई ऐसी चीजों के ऊपर खर्च किया जाए। हाँ वो अब आप उनको दे सकते हैं कि एक साल का उनको खर्चा दे दें, अब वो अगर कुछ गलत काम में करते हैं तो उनके ऊपर है फिर। और मिस्कीन के बारे में ये भी बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जो बेपरवाही के बराबर ना पाए, यानी कि वो आराम से बैठ जाए कि ठीक है मेरे पास इतने हैं, नहीं, ना अपनी ऐसी हालत रखे कि कोई देखकर पहचान ले, और कुछ दे कोई कुछ दे दे ना, किसी से खुद कोई सवाल करे, ना कोई ऐसी हालत अपनी बनाए कि कोई कुछ दे दे, और ना ही ऐसा करे कि खुद सवाल करे। जैसे आप मसलन सफेद पोश लोग होते हैं ना, मसलन आप कोई देखते हैं कोई बेवा है, बच्चों की किफालत करती है और कपड़े सीती है, अब वो कपड़े सीने से कितना का कमा लेगी? खुद भी तो सोचना चाहिए ना हमें। जरूरी नहीं होता कि कोई मांग ही रहा हो तो फिर हमें कोई होश आए। जब हम खुद देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इज्जत की वजह से कुछ कह नहीं सकते, मगर उनकी आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसे अपना गुजारा चलाते होंगे, ये कैसे करते होंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि कोई हमारे से हमने हाथ ही फैलाए तो फिर हमने देना होता है? ऐसे लोगों को खुद पहचानना चाहिए कि ये कैसे करती होगी अपना गुजारा एक औरत, ये इसके पास इतने बच्चों का भी बोझ है, एक सिलाई से ये क्या इसको इनकम आ जाती होगी। ऐसे लोग जो मांगते नहीं है उनका बल्कि ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि वो कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग तो मांग के ले लेते हैं ना, कुछ लोग कुछ बोल नहीं सकते अपनी इज्जत की वजह से। उनको अगर आप ज़कात देते हैं और बगैर बताए भी देते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बता के दें ये ज़कात है ये तुम्हारे ऊपर है, नहीं, आप उनको बगैर बताए भी दे सकते हैं। हाँ ये जरूरी है कोई सैयद ना हो। और फिर वल आमिलीन आलैह, हाँ, और जो काम करने वाले हैं उस पर, काम करने वाले उस पर, यानी जो ये ज़कात जो है ना, ये हकूमत इस्लामी हकूमत का काम होता है कि वो मुसलमानों से कलेक्ट करे, उसका हिसाब किताब रखे, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये कितना बड़ा काम है, अब मतलब पूरे मुल्क से ज़कात कलेक्ट करनी हो तो ये आसान तो नहीं काम, कोई एक बंदा तो नहीं कर सकता। इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें कितने लोग काम कर रहे होते हैं जो लोगों से लेंगे फिर उसको तकसीम करेंगे और उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे, वो बहुत बड़ा काम है। तो अब ये जो काम करने वाले हैं इनकी तनख्वाहें कहाँ से दी जाएं? वो भी ज़कात से दी जा सकती हैं, इसलिए कि वरना वो कोई भी नहीं काम करेगा। ये तो हुकूमत ज़कात से ये दे सकती है। इसी से बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ज़कात के अलावा लोगों के ऊपर टैक्स लगाना ये जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं कि आप लोगों से टैक्स लें, क्योंकि ज़कात का निज़ाम ही अगर आप इतना अच्छा कर देंगे ना किसी मुल्क में, ज़कात इतना फुलफिलिंग निज़ाम है कि उससे सारी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी। कोई फकीर नहीं रहेगा फिर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ, अगर आप सिर्फ ज़कात का निज़ाम सही कर दें किसी मुल्क में। तो ये जो लोग हैं, जाहिर है कोई लोग उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे, कोई हायर करने पड़ेंगे, मुफ्त तो नहीं कोई करता, करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इतने लोग कौन अपना काम छोड़ के दिन रात इस काम में लगा रहेगा? ये बहुत बड़ा काम है। तो फिर उनको ज़कात में से सैलरीज दी जा सकती हैं। हुकूमत को बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आप लोगों को भेजते थे ज़कात कलेक्ट करने के लिए, वो जाते थे, वो ज़कात लोगों से लेते थे, बाकायदा उसका हिसाब किताब लिखा जाता था, फिर लाते थे उस ज़कात को कलेक्ट करके जगहों से, डिफरेंट जगहों से, और फिर एक जगह लाके उसको रखा जाता था, और फिर वहां से इसी तरह फकीरों, मोहताजों, मिस्कीनों, इनके अंदर खर्च की जाती थी वो ज़कात। इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिन लोगों ने कह दिया था मानी ने ज़कात, जिनको कहते हैं उन्होंने कहा था हमने नहीं ज़कात देनी, तो आपने फरमाया था कि मैं इनसे जंग करूंगा। जो लोग नमाज और ज़कात में फ़र्क करें, हालांकि वो मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, कहते थे हमने ज़कात नहीं दी। और ज़कात मैंने पहले भी आपको बताया था, नमाज और ज़कात एक ईमान वाले के लिए पहचान है, इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं कहला सकता अगर वो ज़कात नहीं अदा करता। ये फराइज में से है। अगर आपके पास इतना है, आप ये ना सोचें, अच्छा अब आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा बच्चों को पॉकेट मनी मिल रही है, इस बच्चे के पास इतने पैसे हो गए, आप क्या ये ज़कात दें? नहीं, मैंने आपको निसाब बता दिया ना, आप उतना देखेंगे, उस तक अगर पहुंचे तो फिर हाँ किसी के ऊपर हो सकती है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं है ज़कात। इतने ये अच्छी खासी रकम होती है जो एक साल तक पड़ी रहे तब होती है ज़कात। तो आमिलीन जो थे ना, उनके लिए ये जकात नहीं होगी, उनके लिए ये सैलरी होगी। वो ये नहीं कहेंगे कि हम जकात ले रहे हैं, अगर जकात से उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये लोग भी ऐसे हैं जिनके ऊपर जकात का माल खर्च किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ तो इस तरह के जो एक निज़ाम बना तो हुआ है, लेकिन अक्सर लोग खुद ज़कात देना चाहते हैं, हुकूमत को नहीं देना चाहते, इसलिए कि वो उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये सही जगह खर्च करेंगे इसको। और अगर लेकिन ऐसी हुकूमतें हों कि जो सही खर्च करने वाली हों, तो उन्हीं को देना चाहिए, इस्लामी हुकूमत के पास ही जानी चाहिए ज़कात। वो ही कलेक्ट करें, वो ही आगे दे, क्योंकि उनको ज्यादा पता है कि कौन कहाँ फकीर है, मिस्कीन है, मोहताज है, किसको कितना दे दिया, किसका कितना हिसाब रखा। ठीक है, तो एक ये हो गए। और वल मुअल्लफती कुलूबुहुम, और ऐसे लोग जिनके दिलों को उल्फत दिलाना मकसद हो, उनको भी आप दे सकते हैं, जिनके दिल इस तरह से मायल किए जा सके इस तरफ, इस्लाम की तरफ। इनकी कई किस्में हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक किस्म ये है कि जो नए नए मुसलमान होते हैं सबसे पहले, लेकिन अभी देखें जब कोई नया नया इस्लाम में दाखिल होता है ना, अभी वो थोड़ा कच्चा होता है, कमज़ोर होता है, उनके ऊपर स्पेंड करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि बहुत सारे लोग बेचारे उस वक़्त एक फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं। उनके पहले मसलन अगर कोई लड़की है या लड़का है, तो पहले माँ बाप फीस देते थे, पहले माँ बाप सारा खर्चा उठाते थे, अब माँ बाप कहते हैं अब हमारी तरफ से तू दूर हो जा, तू हमारी औलाद नहीं है, निकल जा घर से। वो किधर जाएं बताएं? अगर उनको मुसलमान नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर वो किधर जाएं? इसी तरह ऐसी औरतें होती हैं, मसलन कोई बेवा औरत है, वो अगर इस्लाम लेकर आती है और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, वो कहाँ जाए एक औरत? या कोई औरत इस्लाम ले आती है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है कि तू इस्लाम लेकर आई है, मेरे साथ तेरा नहीं गुजारा, खत्म है हमारा तेरा रिश्ता, अब वो सड़क पे आ गई है, किधर जाएगी वो? अब हर कोई सदके से भी नहीं उसकी मदद कर सकता। तो वो ज़कात आप दें ऐसे लोगों को, जो भी नए नए मुसलमान होते हैं, अगर वो गरीब फकीर नहीं भी हैं तब भी उनके ऊपर खर्च करें ज़कात में से, उनको सेट कर दें, उनको कहीं घर बार का कोई इंतजाम कर दें, उनको कोई ऐसे ना हो जाए कि वो उन पे डिपेंडेंट हों अभी भी अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग फिर वापस चले जाते हैं, वो क्या करें फिर? तो ज़कात में से उनको दें, उनको घरों पे बुलाएं, उनकी दावत रखें, उनको उनकी दिलजोई करें, उनको गिफ्ट्स दें, उनको सपोर्ट करें, उनके घर का खर्चा अगर चलाना है तो वहां से चलाएं। वो बेचारे अपने रिश्तों नातों की तो कुर्बानी देते ही हैं, वो तो उनके हाथ से जाते ही हैं, वो तो उनके बस उनको छोड़ना पड़ता ही है, लेकिन एक ये भी उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अब हमें सपोर्ट कौन करेगा। ठीक है, तो ये जकात में से करना जरूरी है, और ऐसे लोगों को देख ढूंढना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो मसला है कि मुसलमान तो नहीं है लेकिन इस्लाम की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है, रुझान है, अगर थोड़ा आप उनके ऊपर स्पेंड करें, थोड़ी तवज्जो दें ना, तो वो मुसलमान हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, क्योंकि आप जब किसी को तोहफे तहाइफ देते हैं, किसी के ऊपर स्पेंड करते हैं, कुछ कोई कुछ सामान उसको ले दिया, कोई कुछ ऐसा उनकी मदद कर दी, उसको कोई गाड़ी ले दी, उसको कोई ऐसे, तो वो फिर ऐसे लोग जो माल स्पेंड करना होता है ना, वो इंसान को के दिल के अंदर दूसरे के लिए एक शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है, तो ऐसे लोग हो सकता है फिर उनके साथ उठें बैठें और फिर वो इस्लाम ही ले आए। तो जब किसी को देखें कि किसी के अंदर ऐसी चीज़ है तो उसके ऊपर भी स्पेंड करें। और इसकी एक मिसाल मिलती है हमें हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया, जो उमैया बिन खल्फ का बेटा था, देखो वो इतना बड़ा काफिर और इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन, और उसी पे वो मरा था, लेकिन इसका बेटा सुफान बिन उमैया ये भी मुसलमानों के बहुत खिलाफ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन में जो माले गनीमत आया था उसमें से इसको इतना दिया, हालांकि वो उस वक्त कुफर की हालत में था, लेकिन आप के साथ निकला था ना, तो आपने इतना दिया कि उन्होंने खुद फिर बयान किया, मुसलमान हो गए और बयान किया कि आपके इस देने से मेरे दिल में आपकी इतनी मोहब्बत पैदा हो गई, हालांकि मैं इससे पहले आपका बड़ा दुश्मन था। तो जो आपकी सखावत होती है ना, जो आप स्पेंड करते हैं किसी के ऊपर, वो दूसरे के दिल में आपके लिए जगह बना देती है। आप खुद खुद सोचे, अच्छा इसको भी छोड़ दें ज़कात को भी, वैसे ही आप देखें आप जितने लोगों को जानते हैं उनमें आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं जो बखील हैं, कंजूस हैं, या वो अच्छे लगते हैं जो खुले दिल के, बताएं अल्लाह ताला को भी खुले दिल वाले अच्छे लगते हैं, जो सखी हैं, जो परवाह नहीं करते देते वक्त, और जो कंजूस है वो तो उसके दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगता, उसके खानदान वाले भी उससे तंग रहते हैं। बहुत सारी बीवियां शिकायत करती हैं हमारे शौहर बड़े ही कंजूस हैं, घर पे भी नहीं खर्च करते, तो उनके तो उनके घर वाले भी पसंद नहीं करते। जो जिसका दिल स्टिंजी होता है ना, जो जिसके दिल में तंगी होती है, कोई खर्च नहीं करना चाहता, बचा बचा के रखता है, बस कहीं मेरे पैसे ना कहीं चले जाए, वो किसी का भी महबूब नहीं बन सकता, किसी के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं आती। इसलिए दिल को बड़ा करें, और खर्च करते हुए ऐसे दिल को छोटा ना करें, किधर लेके जाना है हमने, एक दिन मर जाना है ना, तो फिर उसने यहीं रह जाना, फिर तो लोगों ने ही खर्च करना है, क्यों ना अपने हाथ से आज खर्च कर दें, बेहतर नहीं है ये? मतलब साथ क्या कब्र में लेके जाएंगे सेविंग्स, अपनी सारी वो सारे पैसे ले जाएंगे क्या? नहीं ले जा सकते ना, तो क्यों ना खर्च कर दें अपने हाथों से, क्योंकि तो ये एक दिन यही वाले पैसे ना हमारे लिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखते होंगे, वैल्यू लेस हो जाएंगे, कुछ इनकी जीरो भी नहीं हमारे नजर में कीमत होगी, जिस दिन मरेंगे ना तो इनकी क्या वैल्यू, चाहे कितने भी खजाने हो, तो एक दिन इसकी वैल्यू खत्म हो जानी है, तो क्यों ना आज दे दें। और ये स्पेंड, मैं वैसे ही कमूमन बात कर रही हूँ, स्पेंड करना अच्छा होता है कि आप किसी के ऊपर स्पेंड करें, सिर्फ ज़कात ही नहीं, सदकात की फॉर्म में भी, तोहफे तहाइफ की फॉर्म में भी, किसी को भी दें, खर्च कर दें लोगों के ऊपर माल, ये आपको उनके दिलों में महबूब बना देगा। और किसी दिन जब नहीं होंगे दुनिया में, तो वही लोग दुआएं देंगे और इस चीज़ से याद करेंगे। देखिए हातिम ताई का नाम आज तक क्यों है, लोग कहते हैं हातिम ताई का बेटा है सखावत की वजह से, बहुत सखी था, इसीलिए जब उसका बेटा आदि बिन हातिम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए थे, और इसकी बेटी भी जब आई थी तो आपने उसको चादर दी थी उसके सर पे, तो क्यों वो सखी था, इसलिए कि ये सखी की बेटी है। तो आज देखिए लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो किस जमाने में था हातिम ताई, लेकिन हर एक की जुबान पे जरूर होता है हातिम ताई, किसी की सखावत की बात करनी है, कब तक हजारों साल गुजर गए। तो बाज लोग जकात भी इतनी मुसीबतों से देते हैं कि बस वो भी गिन गिन के कि हाय कितनी बन गई, अच्छा कहीं से कम ही हो जाए तो अच्छा है। और याद रखें, अगर किसी ने जकात नहीं दी, नहीं पता था पहले, और ये ही नहीं पता था कि हमें देनी भी चाहिए, या इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, तो इतने सालों की जो जकात है वो अब देनी पड़ेगी, चाहे 10 साल से नहीं दी, और आज की कीमत ही लगा के देनी पड़ेगी, गोल्ड या उस वक्त का जो गोल्ड था आपके पास या कुछ, आज की कीमत लगा के फिर उसकी ज़कात देंगे। तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी में से दिया जा सकता है। इसी तरह ये भी उलमा ने बताया है कि वो लोग जो कि इस्लाम के बहुत दुश्मन हैं और मुसलमानों को ईज़ा देते हैं, उनके शर से बचने के लिए भी उनके ऊपर ज़कात में से स्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब अच्छा एक बात बीच में रह गई कि ये जो पहले मैंने आपको बात बताई है ना कि जो अभी मुसलमान नहीं है लेकिन वो इंक्लाइन है इस तरफ, थोड़ी सी तवज्जो देने से इस तरफ आ सकते हैं, इसका मतलब हमारा हुस्ने सलूक भी होगा और फिर ज़कात से स्पेंड भी करेंगे, तो फिर कोई काम बन सकता है वहाँ पे। ये नहीं होगा कि आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनसे नफरतें कर रहे हैं, आपने उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा हुआ, और फिर तो ज़कात देने का भी क्या सवाल होगा, ठीक है? या आप उनके मुल्कों में दहशत गर्दियां कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मुसलमान हो जाएंगे, कैसे होंगे वो मुसलमान? यानी उनके दिल में जगह बनाओ, चाहे स्पेंड भी करना पड़े ज़कात में से, उनके दिल में जगह बनानी जरूरी। ये नहीं कि कुछ गुनाह करके कि भाई ये शराब पीता है, इसके साथ बैठ के शराब पिए तो ताकि ये खुश हो जाए और इसके दिल में मेरी जगह बन जाए, ऐसे नहीं। जायज तरीके के साथ अपनी जगह बनाएं और उन तक पैगाम को पहुंचाएं। किसी ने बताया कि वो मुसलमान कैसे हुए, उन्होंने कहा कि उनके कुलीग थे जो कि कोई एक डिश थी जो उनको बड़ी पसंद आई, वो उन्होंने उनको खिलाई, तो उन्होंने कहा कि अगली दफा, बिरयानी थी शायद, तो उन्होंने कहा कि अगली दफा उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनसे फरमाइश की, तो वो उनको अपने घर ले गए। कहते हैं वो बिरयानी की प्लेट उन्होंने मेरे हाथ में दी और साथ अपनी इस्लाम की बातें और दीन की बातें और ये सब बताने लगे। तो वो इसी तरह मतलब होने लगा कि वो उनको बिरयानी की दावत देते थे और वो उनके घर जाते और फिर वो अपने दीन की तबलीग करते थे। तो कहते हैं कि उसके बाद वो इस्लाम ले आए और फिर वो हमेशा यही कहते होते थे कि मैं तो एक बिरयानी की प्लेट से मुसलमान हूँ। तो यानी देखिए, जब आप किसी साथ हुस्ने सलूक करते हैं ना, तो वो उसके दिल में जगह बना देता है आपके लिए और फिर राहें खुलती हैं कि आप अपना मैसेज उस तक पहुंचाएं। और रूखे सूखे कोई भी नहीं सुनना चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत दी थी लोगों को खाने की और फिर पैगाम दिया था, तो कुछ स्पेंड तो करना पड़ता है ना इसमें। तो और तीसरी मैंने क्या बात बताई कि वो लोग जिनके दिलों में इस्लाम की दुश्मनी या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या इस तरह बड़े ऐसे, तो उनको भी उनका उनमें सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए ना, आप उनको कुछ ज़कात में से उनके ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं, ताकि उनकी इस्लाम दुश्मनी कम करें। तो मालदार लोग ऐसे अपनी ज़कातों में से ये ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात करके और उनको कुछ दे दिला के और ऐसे करके, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ जुबानें ना खोलें या उनको शर ना पहुंचाएं। और आज के दौर में तो इस चीज की भी बहुत जरूरत है। इसी तरह व फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, गर्दनें छुड़ाने उस जमाने में तो मुकातिब होते थे, यानी ऐसे गुलाम जिन्होंने किताबत की होती थी अपने मालिकों के साथ कि इतने पैसे हम आपको दे दें तो आप हमें आज़ाद कर दें, और मालिक उनके साथ ये मुआहिदा कर लेते थे कि ठीक है भाई, तुम किस्तों में इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो उनकी हेल्प करना, ऐसे गुलामों को आज़ाद कराने में उनकी हेल्प करना ज़कात के ज़रिए, ये भी एक ज़कात की मद है। इसके अलावा भी गर्दनें कई जगह फंस जाती हैं। जैसे एक मैं किसी स्कॉलर का सुन रही थी, मैं हैरान हो गई कि सुभान अल्लाह, वो कितने बड़े स्कॉलर होंगे कि उनको कुरान ही नहीं हिफ्ज, 6 किताबें अहादीस की भी हिफ्ज, यानी सहा सित्ता सारी उनको हिफ्ज, और आज वो एक मुल्क की जेल में है जहाँ पे बहुत सारे उलमा को जेलों में डाल दिया जाता है, वो वहाँ पे जेल में पड़े हुए हैं। और अब वो अपील कर रहे थे कि भाई कोई वकीलों के लिए पैसे या इसके लिए। तो ये भी है कौन सी मद जिसके अंदर आप ज़कात में से पैसे दे सकते हैं, कि किसी की गर्दन फंस गई है। देखिए वो एक कैद में है एक बंदा, उस पर मिसाल के तौर पे किसी पर, सिर्फ इन आलिम की बात नहीं है लेकिन किसी पे भी झूठे मुकदमात करके लोग फंसा देते हैं, बेगुनाह बेचारे कैद में पड़े हुए हैं। अब उनको कौन छुड़ाए ना, उनके पास इतने पैसे हैं कि कोई वकील कर सके, वो पड़े वहां पे जेलों में सड़ते रहते हैं, उसके बाद वहीं पे खत्म हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो उनके लिए भी ज़कात में से खर्च किया जा सकता है, उनको यानी वकील करने में, उनके मुकदमे लड़ने में, उनको छुड़ाने में, ये भी गर्दन छुड़ाना ही है ना, तो किसी मुसलमान कैदी की, ठीक है? इसी तरह गारिमीन, गारिमीन कौन है? जो कर्जदार हैं, कर्जे लिए हुए, कर्जों के बोझ तले ऐसे फंस चुके हैं कि निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं सकते। एक मैंने बहुत पहले देखी थी, पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में, गालिबन सिंध के कोई जगह थी, वहां पे इस कदर बुरी हालत में एक फैमिली थी कि यानी उनका घर दिखाया, एक बिल्कुल झोंपड़ी उसमें, यानी आज के दौर में भी आप सोचते हैं कि ऐसी भी कोई जगह होंगी जिसमें एक चारपाई है, ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे नंगे, कोई कुछ किसी बुरी हालत में, थोड़े थोड़े कपड़े पहने हुए, और वो मियाँ बीवी। तो उन्होंने अपनी जो स्टोरी बताई, उन्होंने कहा कि जो यहाँ का बड़ा कोई वडेरा है उससे हमने कर्जा लिया था, और वो कर्जा लेके आज तक हम, हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे सब उसके जो है ना मकरूज हैं। तो हम अब उसके गुलाम ही हैं, अब जिस तरह से भी वो हमसे काम लेता रहेगा, क्योंकि वो कर्जा तो हम कभी वापस दे नहीं सकते। अल्लाह बेहतर जानता है किस चीज़ के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। उनकी हालत तो कुछ ऐसे नहीं लग रही थी कि कुछ बेहतरी आई हो, लेकिन चूंकि सूद दर सूद कर्जे लेते हैं और उसके बाद उनकी गर्दनें फंस जाती हैं। तो ये भी एक, लोगों को इसमें से निकालना, ये भी ज़कात के जरिए किया जा सकता है। तो इसके अंदर लेकिन ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे हम आज गाड़ियां कार कर्जों पे ले लेते हैं, अब हम कहें अब हमें ज़कात दे दो, हम भी तो मकरूज हैं। नहीं, ये नहीं। हाँ, मगर ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा कि किसी का को नहीं पता था, उसने इतना कर्जा चढ़ गया, क्रेडिट कार्ड पे चढ़ गया या इस पे चढ़ गया, अब इसमें से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, इसलिए क्योंकि वो सूद दर सूद आगे आगे होता जा रहा है, तो उसको भी उसमें से निकाला जा सकता है। और भी गारमीन में तावान भरने वाला हो गया ना, तावान भी जिसको देना पड़ता है। तो आप उसके अंदर भी देखें कि ऐसे लोग जो बाज दफा अगवा हो जाते हैं, फिर वो उनसे मांगते हैं पैसे कि आप इतने पैसे देंगे तो फिर ये बंदे को हम छोड़ेंगे, कोई बच्चा है, कोई औरत, कोई मर्द, तो वो घर वाले नहीं दे सकते, तो उनकी भी मदद करना। इसी तरह जामिन जो होता है, जामिन बाज दफा ऐसे होता है कि कोई एक बंदा कहता है कि अच्छा आप इसको छोड़ दें, मैं इसका जामिन हूं, मैं इसकी जमानत देता हूँ, ये आपको इतने पैसे दे देगा, या ये फलान दिन हाजिर हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर इतने पैसे मेरे जिम्मे हैं। अब वो बंदा तो भाग गया और ये फंस गया जो जमानत देने वाला था। अब चाहे ये गनी क्यों ना हो, मगर इसको भी दे सकते हैं जकात में से। इसी तरह नेक्स्ट है फी सबीलिल्लाह, नंबर 7। फी सबीलिल्लाह ये भी एक काफी बड़ा एक वो है, मद है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी जगहों पे खर्च किया जा सकता है। और पहले इसके अंदर सबसे पहली जो बात कही जाती है, उलमा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किताल के लिए, यानी कहीं लोग मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, फी सबीलिल्लाह लड़ रहे हैं, तो उनके लिए खर्च किया जाना इसमें आता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि कोई कोई इंसान में अपने खानदान के लिए लड़ता है, कोई शोहरत के लिए लड़ता है, कोई माल के लिए लड़ता है, तो इसमें से अल्लाह के लिए लड़ने वाला कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो सिर्फ अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए लड़ता है, वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला है। यानी हर एक को नहीं आप कह सकते ये जी फी सबीलिल्लाह, ये जी फी सबीलिल्लाह, हर एक फी सबीलिल्लाह नहीं हो जाता जिसको हम अपने खुद ही जुबान में कह दें। तो जो अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने वाला, अब आज के दौर के अंदर ऐसी चीज़ डिटरमिन करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात हमें पता चलती है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या फरमाया कि जिहाद है या किताल है, इस इल्म शरीयत इसकी बुनियाद है। अगर शरीयत का इल्म नहीं है ना तो कोई जिहाद नहीं है। तो जिसके पास इल्म नहीं होगा वो जिहाद कर ही नहीं सकता, वो किताल भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि इल्मे शरीयत पे खर्च करना जरूरी है, जिसकी वजह से भी जहां पे भी दीन की नशर व इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन के कामों के लिए जो भी खर्चा किया जाना है वो ज़कात में से किया जा सकता है। इसी में फिर वो कहते हैं कि मदारिस भी आ जाते हैं, मदरसे जो हैं जहाँ पे दीन फैलाया जा रहा है, इसी में फिर वो तालिबे इल्म भी आ सकते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी पढ़ाइयाँ दीन की, और वो लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी इसमें से दिया जा सकता है। लेकिन मस्जिद के ऊपर नहीं खर्च किया जा सकता, मस्जिद हमारी जिम्मेदारी है, हम उसमें नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह हस्पतालों पे ज़कात नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हस्पताल की तो बात ही नहीं आई, या और सोशल वर्क के जो काम है उनके ऊपर नहीं खर्च किया जा सकता, जो दूसरे काम होते हैं, मिसल ने कहीं कोई कुआं खुदवाना है, कहीं कुछ है, और ऑल्दो के पास इसको अब इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन देखें जो भी ज़कात है ना वो किसी पर्सन को दी जानी चाहिए, ना अस्पताल किसी की मिल्कियत है, ना कुआं किसी की मिल्कियत है। हाँ उनको पैसे दे दें, वो फिर कर लें, वो अलग बात है, उसमें से इलाज करा लें। या हस्पतालों में ऐसी फंड्स होती हैं हमारे मुल्क में जो ज़कात फंड होते हैं, जहाँ से गरीब लोगों को दवाई का और इलाज का जो वो नहीं पे कर सकते, वहाँ से उनको पैसे दिए जाते हैं, या उसमें से उनकी बिल्स को पे किया जाता है, वो ठीक है। लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग बनवाना, उसके अंदर मशीनरी रखवाना, उसके अंदर तनख्वाहें देना, उसके अंदर ये करना, ये ज़कात के पैसे में से नहीं हो सकता, सदकात से हो सकता है। और भी सोशल वर्क के काम, इसी तरह यतीम खानों को या औरों को, हाँ यतीमों की को कोई चीज़ लेके देनी है, उन यतीमों के ऊपर कोई को खर्च करना, वो सही है। लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स पे खर्च करना, ऐसी उन पे करना, ये नहीं, ज़कात से नहीं हो सकता। अपने सबील और मुसाफिर, मुसाफिर को भी, चाहे मुसाफिर अमीर ही क्यों ना, लेकिन मुसाफिर भी कहीं फंस गया अगर ऐसी जगह पे, अब उसके पास, आज के दौर में भी मैंने किसी का सुना कि वो किसी एयरपोर्ट पे फंस गए, ना आगे जाने दे रहे थे ना पीछे। अब वो कह रहे थे कि अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, खातून थी कोई, इतने पैसे भी नहीं लेके चली थी। अब वो अपने घर वाले किसी और मुल्क में है, जहां से चली वो कोई और मुल्क था, ट्रांजिट में कहीं बैठी नहीं, और कई दिन उनको वहां पे गुजर गए। तो ऐसे लोगों को भी आप ज़कात में से हेल्प कर सकते हैं, जो कि मुसाफिरों, बाज़ दफ़ा मुसाफिरों की जेब काटी जाती है, कहीं गए में जेब कट गई। अब हर एक के पास तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज के वो कहीं बैक होम से मंगवा ले या कुछ कर ले। अब वो वहाँ पे बेचारा परदेसी है, अब वो क्या करे, ऐसे में उसकी भी हेल्प ज़कात से की जा सकती है। अच्छा एक बात फी सबीलिल्लाह में ये भी है कि दीन के इल्म की इशाअत में, कि आज के दौर में बहुत सारे इसके टूल्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ ये ही नहीं है कि हम दीन की इशाअत का मतलब ये है कि कोई तालिबे इल्म को ही सपोर्ट करना है, बल्कि कोई बुक्स कहीं ऐसी रखवा देना, कहीं बुक्स किसी को लेके दे देना, या कोई टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिनमें दीन की इशाअत का सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है, उनमें कुछ और फजूल चीज़ें नहीं होती, और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह के दीन की इशाअत है बस। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बहुत दीन को फैलाया जा रहा है, उनमें उनकी हेल्प करना जो कमर्शियल बेसिस पे ना हो, सिर्फ इसके लिए हो। और मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आज जो क़िताल है ना, वो जंग है ना, जो लड़ना है, वो मैदानों में नहीं हो रहा, आज इसके डिफरेंट तरीके हैं। आज उसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो ये फौजें आमने सामने आके नहीं लड़ेंगी, आज डिफरेंट जराए हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनके जरिए जंगें लड़ी जा रही हैं। जंगें तो हो रही हैं, दिफा भी हो रहे हैं, लेकिन वो वाले नहीं है जो पहले थे। तो अब ऐसे कामों के लिए भी ज़कात को खर्च किया जा सकता है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिनसे इस्लाम का दिफा किया जाए, इस्लाम को प्रमोट किया जाए, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए हैं, चाहे वो कोई और चीज़ों के ज़रिए हैं, तो वहाँ पे भी खर्च किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें अब पता चल गया ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खर्च करेंगे, और इनमें अव्वलीन कौन हकदार हैं, फ़ुकरा, मसाकीन और ये आमिलीन और ये सारी, फिर उसके बाद एंड तक ही आठ हैं। अब ज़रूरी नहीं आप आठों के ऊपर खर्च करें, इनमें से किसी एक के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। फरीदतम मीन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है उनके ऊपर जो साहिब निसाब है, कि वो खर्च करें यहाँ। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये ज़कात की बात हो रही है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला भी है, हिकमत वाले भी है। उसने जो ये डिफरेंट जगह बताई हैं जहाँ पे ज़कात देनी है हमें, तो ये उसने अपने इल्म की बुनियाद पे बताई हैं, अपनी हिकमत से बताई हैं। हो सकता है आप में से कोई कहे, नहीं जी उसको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फलां को ज़्यादा ज़रूरत थी, फलाने का को दिया जाना चाहिए था। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन आठ को दिया जा सकता है, इन आठ के अलावा, इनसे बाहर अगर कोई ज़कात देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होती फिर, क्योंकि कह दिया गया इन्नामा, सिर्फ और सिर्फ ये, इसके अलावा नहीं कोई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उलमा कहते हैं उनकी उनकी पोजेशन में जानी चाहिए वो चीज़, उसको उसके हाथ में देनी चाहिए वो चीज, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। ऐसे नहीं कि एक जनरल चीज है जिससे आके अमीर भी उससे ले रहे हैं, उससे गरीब भी ले रहे हैं। कोई भी चीज है, मसलन कोई हॉस्पिटल है या कोई कुआं है या कोई है, सारे ही उसे पानी पी रहे हैं, तो फिर नहीं, उसकी मिल्कियत होनी चाहिए जो गरीब है या मिस्कीन जिनके लिए भी वो कर रहे हैं। नबी, और इनमें से वो लोग भी हैं जो अजियत देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अभी फिर दोबारा मुनाफिकीन की बीच में भी उनकी एक्चुअली बात आ रही थी कि उनको बता दिया गया कि अगर तुम ये कहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने जो फर्ज ज़कात है उसके तो मसारे खुद ही बता दिए, इनके बाहर तो किसी को दिया ही नहीं जा सकता। अगर तुम इनमें होगे तो तुम्हें मिलेगा, अगर नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। तो ये भी असल में उनकी बात थी, लेकिन रहती दुनिया तक, ये इस आयत के अंदर जनरल भी हमें पता चल गया कि जकात किसको सिर्फ दी जा सकती है। अब यहाँ पे बताया गया ये अजियत देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यकूल ना हुआ उदुन, और वो कहते हैं वो कान है। कान है का मतलब क्या, यानी कानों के कच्चे हैं, जैसे हम मुहावरा बोलते हैं ना, कानों का कच्चा किसको कहते हैं, वो जो हर एक की बात में यकीन कर ले, कोई भी आके उसको कुछ कहे तो वो उसको मान ले, तो उसको कहते हैं ये तो कानों का कच्चा है। तो मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के ना कभी हंसी मजाक की ऐसे बात करते, कभी कोई डबल बातें करते थे, जैसे वो यहूदी करते थे इसी तरह इनका भी तरीका था, कभी झूठ बोलते थे कभी, और उसके बाद कहते थे देखो ये तो कानों के कच्चे, इन्होंने हमारी बात के ऊपर यकीन कर लिया, या इनको तो समझ ही नहीं आई कि असल में हम क्या क्या रहे थे, तो हम तो इनको मजाक कर रहे थे और इनको समझ ही नहीं आया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल उदुनु खैरिन लकुम, कह दो है नबी, कह दीजिए उदुन कानों का कच्चा, कान होना बेहतर है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आती थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ये ऐसी बहाने कर रहे हैं, ये ऐसी झूठी कस्में खा रहे हैं, ऐसे नहीं था कि आपको समझ नहीं आती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की बुलंदी थी, आपका अखलाक था कि आप उनके मुंह पे कहते नहीं थे तुम झूठे हो और झूठे बहाने कर रहे हो, और ये तुम मुझे सुना रहे हो और ये तुम मुझे लगा रहे हो, या ये तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। आपकी शान के लायक नहीं था ये, आपकी शान इससे बुलंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते थे, खामोश रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और वो समझते थे कि पता नहीं हमने कितना कारनामा कर लिया, हमने देखो तो इनको हमने जो कहा इन्होंने भी यकीन कर लिया, हंसते थे इस बात के ऊपर, बाहर जाके कई बातें बनाते थे, मुसलमान कहते थे हम तुम्हारी बात जाके बता देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कहते थे तुम जाके बता दो हम जाके उनको कह देंगे, और वो तो वैसे ही कान है यानी कानों के कच्चे हैं, उन्होंने हमारी बात पे यकीन कर लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इग्नोर करना जो था इनके लिए बेहतर था, इसलिए कि अगर आप इनको कहते कि तुम झूठे हो तो ये इनके लिए बुरा था ना। तो फरमाया उजुन तो बेहतर है तुम्हारे लिए, या इनको कहते कि तुम कोई बद्दुआ देते कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे से आके झूठ बोलते, और तुम झूठे पे तो अल्लाह की लानत है, तो तुम लानत ज़दा हो गए, तो ये इनके लिए कितना बुरा होता। तो इनको समझ नहीं आती, ये हंसते हैं कि वो उजुन है, हालांकि अगर तुम देखो तो उजुन तो तुम्हारे लिए बेहतर ही। माँ बाप भी नहीं, कई दफा बच्चों की कोई बात उनको समझ आ रही होती कि क्या है, लेकिन खामोश रहते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इस चीज को एक इशू बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बुलंदी है, किरदार था ये। तो ये हमें इससे एक नसीहत मिलती है कि हर एक की बात इस काबिल नहीं होती कि उसके ऊपर जवाब दिया जाए, या उसको खरी खरी सुनाई जाए, या वहीं उसके साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाया जाए, चाहे समझ आ भी गई है कि ये गलत कर रहा है, ये मुझे ही सुना रहा है, या ये मुझे ही कह रहा है, या ये मुझे ही दिखा रहा है, या ये झूठ बोल रहा है, या क्या कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर एक की बात को ऐसे किया जाए। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों की ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं, दरगुजर, बस चुप रहते हैं, सुन लिया, समझ भी आ गई है, लेकिन कुछ भी नहीं शो किया। तो ये भी एक बुलंद इखलाक होने की निशानी है। फरमाया वो उजुन जो है ना, वो बेहतर है तुम्हारे लिए, युमिनु बिल्लाही, वो ईमान रखता है अल्लाह पर, वो उसका अल्लाह पे ईमान है, वो युमिनु लिल मुमिनीन। अच्छा, एक युमिनु के बाद बी आया, एक युमिनु के बाद ली आया, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। जब ईमान के बाद बी आ जाए और ईमान के बाद ली आ जाए, क्या फर्क है, ईमान आमना के बाद ना जब बी आता है तो इसका मतलब तस्दीक करना, दिल से तस्दीक करना, वेरीफाई करना। और ईमान के बाद जब ली आ जाए, लाम आ जाए, तो यकीन कर लेना। तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों की बातों का यकीन करते हैं, क्योंकि मोमिन जो होता है कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो मुनाफिक की खसलत है ना, कि वो उसमें तीन बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उसको तोड़ता है, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती तो खयानत करता है, और एक चौथी भी बात बाज़ा हदीस में आती है कि जब झगड़ा करता है तो गालम गलोच करता है। और बता दिया गया हमें कि जिसमें तीनों ये निशानियां या चारों ये निशानी, वो तो पक्का मुनाफिक है। जिसमें एक है वो उस दर्जे का, वो मतलब है कि उतने दर्जे का मुनाफिक है। एक निशानी जो है जिसमें दो है वो उससे ज्यादा बड़ा, जिसमें तीन है वो सबसे बड़ा है। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बताई गई कि वो तो उजुन है, वो हैं जो अल्लाह ताला की हर बात पे ईमान रखते हैं, वो मोमिनों के ऊपर उनकी बातों का यकीन करते हैं। वा रहमतुल लिल्लदीन आमनू मिनकुम, और रहमत है ये ईमान वालों के लिए, वो रहमत है। लिल्लदीन आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान वाले हैं उनके लिए, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कोई बात करते थे तो उनकी बात के ऊपर यकीन करते थे, उनके लिए रहमत थे। और आप यहां से देखें ये बात पढ़ के कैसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद हस्ती को भी लोगों ने, बाज लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी बातें करने और इल्जाम लगाने। और कोई कह रहा है जी आप इंसाफ करें, आपको तो अल्लाह ने इंसाफ का हुक्म दिया। भाई वो नहीं इंसाफ करेंगे तो और कौन करेगा उनके ऊपर इल्जाम? ठीक है, कोई इंसान करप्ट होता है ना, उसको भी बुरा लगता है कि मुझे क्यों कह दिया। और एक इंसान इस कदर बुलंद इखलाक वाले, आपने तो अपने लिए कभी कुछ रखा ही नहीं था, तो ये लोग उनको भी इल्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पे बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बदतमीजियों को देख के और बर्दाश्त करके और इग्नोर कर देते थे, उसके ऊपर भी ये सोच रहे हैं कि ये तो उजुन है, ये कह रहे हैं, यानी उनका एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, ना इसको मेंशन किया कि देखो ये कहते हैं या ये करते हैं। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया, अपने नबी को की बात के बारे में जो उन्होंने बात किया उसको अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम ये कहते हो, हालांकि वो तो तुम्हें पॉइंट आउट नहीं कहते करते, तुम्हें सरे महफिल रुसवा नहीं करते, इस पे तो तुम्हारे लिए खैर है। और तुम सोचते कि वो उजुन है। वल्लदीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम आदाबुन अलीम, वो लोग जो अजियत देते हैं, दुख देते हैं अल्लाह के रसूल को, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जाहिर है लोगों के रवैयों और उनकी बातों से दुख होता है, इंसान ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख होता था, कोई ये थोड़ी है कि वो उनको पास दिल ही नहीं था। बात यह कि उनका किरदार और अखलाक ऐसा था, उनको सब्र ऐसा था, उनका माफ कर देना ऐसा था। वरना ऐसा नहीं है कि कोई बातें कोई दीवार है कि जिसे टकरा के जो है ना, नाउज बिल्ला के कोई असर ही ना होता हो। जब इंसान होता है तो उसके अंदर जज्बात भी होते हैं, तो इनकी बातों और उनके रवैयों से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी, अल्लाह ताला ने फरमाया जो नबी को तकलीफ देता है उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और ये देखो आगे से क्या कर रहे हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एहसान ही इतना बड़ा है, ये अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का एहसान किसी पे है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पे एहसान है, जिन्होंने इतने दुख सह के भी और फिर भी लोगों की खैर ख्वाही की और उनकी हमेशा की जिंदगी को संवारने के लिए अपनी इस दुनिया की जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उसको तो जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। जो इंसान समझ जाए इस बात को, उसको तो इतनी आपसे मोहब्बत होगी कि ये तो हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं, इन्होंने तो हमें बचा लिया। तो छोटी सी किसी खतरे से या नुकसान से कोई किसी को बचा ले तो उसके ऊपर इंसान कितना शुक्रगुजार होता है, जो वाकई शुक्रगुजार है इंसान जिसकी फितरत सलीम है। और वो जिन्होंने हमेशा की आखरत की जिंदगी की परेशानियों से निजात का नुस्खा इंसानियत को दिया, उनका कितना बड़ा एहसान। फिर भी लोगों ने इल्जाम लगाए और फजूल बातें की। अगर उनको नहीं छोड़ा तो खुद सोचें हम, कि हमें कोई कुछ कह भी दे तो ऐसा क्या हमारे शान में कोई गुस्ताखी हो जाती। और वो भी अल्लाह के रास्ते में अगर तकलीफ दे बातें बर्दाश्त करनी पड़े कोई ऐसी किसी की जो बंदे ने किया भी नहीं है, जो उसके अंदर है भी नहीं, वो ऐसी कोई बात कह दे, दिल आजारी हो जाए, तब भी ये सोच लिया करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने क्या क्या कहा था। तो जरूरी नहीं कि कोई मतलब सच्ची बात कर रहा हो तो फिर है, झूठी भी लोग बातें करती हैं और दुख भी होता है, लेकिन फिर भी चलते रहना, फिर भी रोने धोने के में, और फिर ये कि हम नहीं अब ये काम करेंगे, इस तरह बैठ नहीं जाना। याद रखें इस रास्ते पे जो भी चलेगा तकलीफें आती हैं। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम, वो कसमें खाते हैं अल्लाह की आपके आगे ताकि आप राजी हो जाएं, आपको राजी कर लें, यानी किनको, मुसलमानों को, तुम सबको राजी कर लें, तुम सबको, यानी मुसलमान हमसे ये यकीन कर लें, कसमें खाते वल्लाह व रसूलु अहक इनका मुमिनी, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि वो उनको राजी करें अगर वो ईमान लाने वाले हैं, उनका ज्यादा हक है, इसलिए कि उनका एहसान है उन अल्लाह के आगे खड़े होना, लोगों को राजी करने का क्या है, मगर उनकी कोशिशें क्या हैं, कसमें खा खा के क्या कोशिश है, लोग बस राजी हो जाए, मुसलमान हमें मुसलमान देखे, वो कहीं हमारे ऊपर उंगली ना उठा देंगे ये काफिर। तो पहले जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसमें खाते थे, बहाने बनाते थे, फिर आम मुसलमानों के पास भी जाकर कोई यकीन दिलाते थे कि कसम से हमारा तो ये मसला है, या फिर मुसलमानों के खिलाफ बातें करते थे, जब वो बातें लीक आउट हो जाती थी अब उनको फिक्र पड़ जाती थी कि आए अब क्या करें, या हमें कुछ मुनाफिक ना समझ लें, तो जाके उनको कसमें खा करके यकीन दिलाते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बातें भी तो करते थे ना खिलाफ। तो असल तो इंसान को ये दीनदारी अगर किसी में है ना, तो उसको सबसे ज्यादा ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह और उसका रसूल वो मेरे से राजी हो जाए। और मुनाफिकत की बुनियाद क्या है, कि लोग राजी हो जाएं, क्योंकि लोगों के साथ ही उसने अपना मफाद जोड़ा होता है ना, यहां से फायदे जो मिलने तो ये राजी हो जाएंगे तो फिर मुझे फायदा मिलेगा, तो उसकी सारी दीनदारी क्या है, लोगों का डर, लोग ना कुछ कह दे, लोग मुझे ऐसा ना समझ ले, अल्लाह राजी हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ा, या नहीं भी राजी हुआ तो क्या हुआ, उनका ईमान ही नहीं है ना। अल्लाह अकबर, अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, क्या इनको पता नहीं है कि जो कोई अल्लाह के और उसके रसूल की मुखालफत करता है, उनसे मुकाबले करता है, जो उनके साथ दुश्मनी करता है, उनको अल्लाह के रसूल को सताता है, उसके लिए तो जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा उसको रहना है। आपको पता है ना कि मुनाफिक के लिए तो क्या है, इन्नल मुनाफिकुना फिद दर्किल असफली मिनन नार, उस आग के भी सबसे निचले हिस्से में होंगे। ये अल्लाह रसूल के साथ मुकाबले की बात करती हैं, ये अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में रुकावट बनते। देखिए एक होता है कि सामने दुश्मनी करना, वो तो दुश्मन सामने नजर आता है, एक आस्तीन का सांप होता है ना आपके साथ भी मीठा मीठा बन के रहे, पर उधर भी जाके आपकी चूलियां करे, फिर आपके मुंह पे आता है, फिर इतना मीठा बन जाता है, आपको वो ज्यादा बुरा लगता है या वो एक है जो आपके साथ बात ही नहीं करता, वो आपका है ही मुखालिफ, वो उसके साथ आपकी बनती नहीं, आपको ये ज्यादा बुरा लगता है। आम जिंदगी में भी आप देखें ना, इसी तरह ये इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए है और अंदर बैठ के और फिर नुकसान पहुंचाते हैं। दालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये है बड़ी रुसवाई। हाय इनको इस दुनिया की रुसवाई की पड़ा हुआ है ना, कि हम दूसरों के सामने कहीं ये ना हो जाए कि कोई हमें मुनाफिक समझ ले, कोई हमें ये ऐसा समझ ले, तो इसलिए वो अपनी सफाइयां पेश करते हैं, उनको ये डर है कि हम रुसवा ना हो जाए, तो असल रुसवाई तो ये है कि कोई जहन्नुम में चला जाए, ये है असल रुसवाई, ये असल जिल्लत। तुम यहां पे अपने आप को गुड बुक्स में रखना चाहते हो लोगों की, यहां पे अच्छे अच्छे बन के रहना चाहते हो, ये देखो ये है जिल्लत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठते थे ना, तो रोजाना आले इमरान की ये जो आखिरी आयात है वो पढ़ते थे, तो उनमें एक दुआ है बड़ी प्यारी, रब्बना इन्नक मन तुदखिलिल नारा फकद अखजैता, अल्लाह जिसको तूने आग में डाल दिया ना वो तो रुसवा हो गया, तूने उसको रुसवा कर, अल्लाह उसके अंदर तो रुसवा ही है। तो फिर आगे है ना उसके अंदर, रब्बना व आतिना मा वातना ला रसूलिका वला तुखजीना यौमल कियामा, अल्लाह हमें वो देना जिसका तूने वादा अपने रसूलों से किया, हमें कयामत के दिन की रुसवाई से बचाना। उस दिन रुसवाई क्या है कि कोई जहन्नुम में चला जाए, अल्लाह उस दिन हमें रुसवा ना करना। यौम तुबल सरायर, जिस दिन सीनों के भेद सामने लेकर आ जाएंगे, वो देखें जो सजा है वो तो सजा है ही एक आग की, एक वो भी रुसवाई होगी जब इंसान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा कि तुम थे क्या, तुम्हारी असलियत तो ये थी और तुम क्या बने फिरते थे, या तुम्हारा किसी को भरम रखा होता तुमने किसी के सामने, ये था तुम्हारा असल चेहरा। आज इस दुनिया में भी ना किसी का अखबार में या टीवी में या किसी मीडिया पे उसको बता दिया जाए कि इसने ये किया है, एक जुर्म, कोई एक कसूरी, इसका फलां के साथ अफेयर था, या ये फ्रॉड था, या इसने करप्शन की है, वो मुंह छुपाता फिरता है, वो इंसान किसी के सामने आने के काबिल नहीं रहता, इतना एम्बेरेस फील करता है। तो कहां वो दिन जब सारी जिंदगी नशर हो जाएगी, वाइज सुहफ नुशीरत, सहीफे नशर कर दी जाएगी, ब्रॉडकास्ट हो रही होगी, यहां पे टीवी पे ब्रॉडकास्ट को तो छोटी सी बात है ना, वहां पे इंसानियत के सामने नशर होगा, इंसान आमालनामे छुपा छुपा के नहीं दिए जाने कि ये लोग, जैसे पेपर दिए जाते हैं बंद करके दिया जाता है, कोई नंबर ना मेरे देख ले, तो भी बंद करके लेके जाते हैं अपने डेस्क पे जाके, फिर वहां पे खोलते हैं और फिर छुपा के दूसरे से देखते हैं, मैंने नहीं दिखाना तुम्हें, माइंड करते हैं अगर कोई आगे बढ़ के नंबर देखने की कोशिश करे, नहीं तुम्हें क्या, तुम अपना देखो, नहीं वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे तो नशर होंगे अमल, तो फिर देख लो कि क्या चाहते हो, कि क्या नशर हो मेरा, मेरी तहज्जुदें नशर हो, मेरे सदकात नशर हो, या मेरी बेईमानियां नशर हो, या मेरा दोगलापन नशर हो, या मेरी मुनाफकत नशर हो, क्या चाहते हैं। तो वो आज की रुसवाई से बच के समझते हैं, बच गए हम, देख लो हमने अपनी बात मनवा ली, देख लो ये तो हुजून है, देख लो हमने झूठ बोला और इन्होंने मान लिया, ये आखिरत की रुसवाइयों से कैसे बचेंगे। याहज़रुल मुनाफिकूना, डर रहे हैं मुनाफिक, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम, के उतारी जाए उन पर, यानी उनके बारे में, उन पर नहीं सॉरी, अहले ईमान पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी मुसलमानों पे उतारी जाए कोई सूरत, तो नब्बी उहुम, जो आगाह कर दे उनको, इन मुसलमानों को आगाह कर दे, बीमा फी कुलूबिहिम, जो इनके दिलों में है उसके बारे में, कोई आयत ही ना उतर आए इनके ऊपर, और हमारा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आयतें तो उतर रही थी दिन रात, कुरान तो उतर रहा था उस वक्त, तो अब उनको ये भी डर रहता था कि हाय हमारे पोल ही ना खुल जाए, हाय कोई ये ना हो कि कोई ऐसी आयत आ जाए जिसमें हमारे बारे में बातें हों, इसका मतलब उनको पता था, जानते थे कि ये सच्चा दीन है, और जानते थे कि अल्लाह ताला दिलों की बातें जानता है, और जानते थे कि अल्लाह सुन रहा है, लेकिन पता है क्या है, ये क्यों कैसे करते थे, इसलिए कि ये दुनिया का मफाद, इसका लालच, इसकी मोहब्बत, ये तो गुनाहों की जड़ है, जड़, ये इतनी ज्यादा इंसान को अपने अंदर ले लेती है कि उसको परवाह ही नहीं रहती, वो बह जाता है इसमें, ये इतनी बुरी चीज है, ये हुब्बे दुनिया, ये तो इंसान का दीन ईमान ही उसको सफाया कर देती है इसका, वो दुनिया की मोहब्बत ही थी ना कि उनको जो चैन ही लेने दे रही थी, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं यहाँ पे ना हम नीचे हो जाए, कहीं वहां पे ना, बस हर जगह हमने गुड बुक्स में ही रहना है, उधर भी हम अच्छे, इधर भी हम अच्छे, कुछ लोग खानदानों में भी ऐसे होते हैं, वो जिधर बैठेंगे उधर उसकी हाँ में हाँ और दूसरे की बुराई, उधर गए तो उसकी हाँ में हाँ और दूसरे की बुराई, तो हम भी तो ऐसे नहीं है, ये भी मुनाफकाना रवैया ही है, अपने आप को देखिए, मेरा कैरेक्टर इसके जैसा तो नहीं है, जिसके साथ बैठे उसके मुंह पे मियाँ मिठू बन गए, उसके आगे मीठे बन गए, वो तो उसके बाद वहां से निकलते हैं तो अब मीठापन कहाँ जाता है, तब सारी मिठास खत्म, तब कड़वाहट आ जाती है। तो वहां पे इतने मीठे क्यों बने हुए थे? ये मिठास लेके जाओ ना। मुनाफिकीन का यही तो प्रॉब्लम था, उनके सामने मीठे, उधर मीठे, उधर मीठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आगे कसमें खा रहे हैं, मीठे बन गए हम आपके साथ, बस आप फिक्र ही ना करें, हमारी तो जाने आपके लिए, हमारे तो। उसके बाद क्या, कुल इस्तहज़ियो, कहा गया ठीक है मजाक उड़ा लो, इन्नल्लाह मुखरिजु मा तहज़रून, बेशक अल्लाह ताला निकालने वाला है जिससे तुम डरते हो। जो तुम्हारी मुनाफ़क़त है ना कि ये खुल ना जाए, ये पता ना चल जाए, अल्लाह ने वही निकाल के बाहर कर देनी। अल्लाह अकबर। ये मुनाफिक ना असल में एक साथ मिलके बैठ जाते थे ना, जो एक जैसे होते थे, फिर मिल के अपनी मजलिसें करते थे, फिर उनमें खूब बुराइयां करते थे। अब उसके बाद जब उठते थे फिर कहते थे हाय हाय चुप कर जाओ चुप कर जाओ, ये ना हो कि उनको पता ही चल जाए, ये ना हो कोई कोई कुरान ही उतर आए। अल्लाह माफ करे। वला इन सअलतहुम, और अलबत्ता अगर पूछो तुम उनसे, लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूद व नलअबू, जब इनकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती थी, ये बातें कर रहे हैं, तो आप उनको बुलाते थे ना कि तुमने ऐसे कहा है, तुमने ऐसा कहा है, तो वो कहते थे नहीं लो आपको ऐसे ही इन्होंने आके कह दिया, हम कौन सा सीरियसली बात कर रहे थे, हम तो ऐसे ही मजाक करने लगे हुए थे, इन्होंने आपको शिकायत लगा दी, हम तो लाइट मूड में ऐसे ही बातें कर रहे थे। अच्छा ये तो ये बड़ा मसला है कि किसी को इज्जत उतार देना आज, किसी को सरे मजलिस रुसवा करना, किसी के ऊपर बातें कसना और हंसना ठट्टे मारना, और वो बेचारा शर्मिंदा होता जा रहा, और फिर कहते लो तुमने माइंड ही कर लिया, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, आपका मजाक हो गया, दूसरे बेचारा रुसवा हो रहा है, दूसरा शर्मिंदा होता जा रहा है, उसको आप जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बड़ा मजाक कर रहे थे। आपका मजाक ऐसा है कि जिसमें दूसरों को जलील किया जाए? ये मुनाफिकीन का तरीका था, हमने वो तरीके अपना लिए। अब ये देख लें कि जब अब वो तो दीन इस्लाम पे करते थे, मुसलमानों पे करते थे, और भी वर्स बात है, और फिर आके क्या कहते थे, नहीं हम तो वैसे ही कर रहे थे, हम तो मजाक ही कर रहे थे। अब ये जो कार्टून बनाया तो उन्होंने कहा कि ये तो हम मजाकन बनाया, आप लोग ऐसे ही सीरियस ले लेते, मुसलमानों को पता नहीं क्या हो जाता। तो उनको जवाब अल्लाह ताला ने क्या दिया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, आप इनको ये जवाब दीजिए, अबिल्लाही व आयाती ही व रसूली ही कुंतुम तस्तहज़ीउन, कि अल्लाह ही रह गया है, उसका उसकी आयतें और उसका रसूल ही रह गया जिसके बारे में तुम मजाक करते हो, अल्लाह के साथ करते हो मजाक, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ तुम मजाक, सोचो तो सही किसका मजाक करे। आप खुद देखें, क्या आप जिससे मोहब्बत करते हो या जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं कभी उसका मजाक कर सकते हैं? किसी ने अपनी अम्मी का कभी मजाक किया कि मेरी अम्मी इस तरह चलती हैं और वो ऐसी हैं और वो देखो उसका मुंह ऐसा है और मेरी मेरा बाप ऐसा है, किया कभी? नहीं किया ना, इसलिए कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए इज्जत के जज्बात रखते हैं। जिसको आप कुछ नहीं समझते ना, इस्तेज़ा होता भी वो है जो ऐसा मजाक जो किसी को हकीर समझ के किया जाए। तो जब आप किसी को कुछ नहीं समझते ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती आपकी नजर में, तभी आप उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी इंसान जिसको मोहतरम समझता है, जिसको काबिल इज्जत समझता है, कभी नहीं उसका मजाक उड़ाएगा। ये लोग अल्लाह रसूल के बारे में मजाक करते हैं, अल्लाह की आयतों के बारे में, और ये वो नहीं, सिर्फ आज भी ऐसा होता है, मजलिसों में बैठ के लोग हूरों के बारे में लतीफे बनाए हुए, जहन्नुम के बारे में, जन्नत के बारे में, आपके नजदीक ये मजाक की चीज है? जहन्नुम मजाक की चीज है? जन्नत की हूरें मजाक है आपके नजदीक? इसी तरह अल्लाह की कई आयतों के बारे में, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के बारे में, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल हुलिये के बारे में, दाढ़ी के बारे में, टखनों से ये शलवार ऊंची करने के बारे में, अल्लाह ताला की आयात, बहुत सारे अल्लाह के अहकामात हैं जिनका आज मजाक किया जा रहा है, अल्लाह की आयात ही है ना, हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में, उनके ऊपर कितना मजाक होता है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है और फिर हंसते हैं, तो क्या अल्लाह की आयतें रह गई हैं मजाक करने को? कैसे इंसान की जुर्रत हो सकती है कि वो रब्बे कायनात के अहकामात के बारे में मजाक करे, उनको मजाक का निशाना बनाए, वो जो जुल जलाली वाली कराम है उसकी बात का? ये कुरान क्या है, ये दीन क्या है, ये इस्लाम क्या है? किसने ये अहकामात भेजे? मैंने और आपने तो नहीं बना लिए ना, ये मौलवियों का कोई काम है, अल्लाह ताला के अहकाम आते हैं ना, उनका मजाक करना अल्लाह की बात का मजाक करना है ना। रसूल के तरीकों का मजाक करना रसूल का मजाक करना है, और आराम से मुसलमान है लेकिन आराम से मजाक करना है। इसका मतलब वो चाहे कह भी दें कि नहीं हम तो जोक कर रहे थे, हम तो सीरियस थे ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं वो मजाक करते हैं, वाकई मजाक कर रहे थे। इसका मतलब मुंह से बोलने से ये कह देना नहीं हम तो बस ऐसे ही, हम तो बस जोक ही कर रहे थे, इसमें क्या बात है, ये कह देने से बात नहीं बनती। जब आप मजाक कर रहे होते हैं तो वो मजाक ही होता है। आप ये नहीं करते कि कोई आला तरीन कोई हस्तियां आपकी जिंदगी के अंदर उनका मजाक करके आपका नहीं है अम्मी मैं तो बस जोक ही कर रही थी, ऐसे नहीं करते आप। ला ताता जीरो ना, तुम माजरते करो, आप आके माजरते करना और आप आके ये कहना नहीं नहीं हम तो ऐसे कह ही नहीं रहे थे, नहीं अब तुम माजरते करने की जरूरत नहीं है। कद कफर तुम बादा ईमाने को, ईमान लाने के बाद इस्लाम लाने के बाद तुमने कुफर कर लिया, यानी अल्लाह और उसके रसूल का मजाक और अल्लाह की आयतों का मजाक कुफर है। कोई ईमान लाया भी है इस्लाम में भी है, कोई अपने आप को मुसलमान भी कहलाता है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है उसके ईमान की अगर वो अल्लाह रसूल या उसकी आयतों का मजाक करे। ये छोटी बात नहीं है, देखिए कोई ये नहीं कह सकता नहीं ना आप इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, ये तो वैसे ही मैंने एक लतीफा पढ़ा था वहां पे, ये लतीफे लतीफे बनाने ना वो ये एक बाउंड्रीज होती है इंसान की मजाक की भी, आप लिमिट से नहीं निकल सकते कि आप वहां तक पहुंच जाए। नाफू अन तौइफतिन मिनकुम नुअद्दिब तौइफतम बि अन्नहुम कानू मुजरिमीन, अगर हम दरगुजर कर दें एक गिरोह को उनमें से तो एक गिरोह तो जरूर है जिसको के हम अजाब देंगे इसलिए कि वो मुजरिम है। अब यानी जो कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया हम दरगुजर कर देंगे, लेकिन जो कोई इसी रविश पे रहता है तो ऐसे ग्रो को तो अजाब मिलेगा ही क्योंकि वो मुजरिम है। अभी भी उनके पास वक्त था कि वो बाज आ जाते, अभी भी वक्त था कि वो तौबा कर लेते। सीरत इब्ने इसहाक में है कि तबूक जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकों का एक ग्रो भी था जिनमें दो लोग थे या आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि देखो भाई नसरानियों की लड़ाइयों को इन्होंने अरबों की आपस की लड़ाई जैसा समझ लिया, यानी अरबों से तो आज तक लड़ते रहे तो अब देखो इनका हाल क्या है, उधर भी लड़ने चल पड़े, तो अब ये बड़ी गलती है इनकी, अच्छा है इन्हें वहां पे पिटने दो फिर हम भी यहाँ इनकी दुर्गत बनाएंगे। इस पर इनके दूसरे सरदार ने कहा कि भाई इन बातों को छोड़ो वरना ये जिक्र फिर कुरान में आ जाएगा, ये इनके उनको अल्लाह ताला बता दे तो कोड़े खा लेना हमारे नजदीक, तो इस रुसवाई से तो बेहतर है ये तो हम रुसवा हो जाएंगे अगर हमारी बातें कुरान के अंदर आ गई, यानी इतनी बात पता थी। और फिर जब जाके इनकी इन बातों को हजरत उमर ने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो इन्होंने आके माजरतें देनी शुरू कर दी कि नहीं हम तो हंसी मजाक कर रहे थे हमारे मुंह से ऐसी बात निकल गई इस तरह से। एक ने कहा कि नहीं मेरा तो नाम ही फोहश बिन हुमैर है, तो मेरा और मेरे बाप का नाम ही आप देखें इस वजह से मैं ये कर रहा था और ये हमाकत हो गई मुझसे, मुझे